ओम शांति। 14 जनवरी 1982। आवाज में आने के लिए व आवाज को सुनने के लिए कितने साधन अपनाते हो? बाप दादा को भी आवाज में आने के लिए शरीर के साधन को अपनाना पड़ता है, लेकिन आवाज से परे जाने के लिए इन साधनों की दुनिया से पार जाना पड़े। साधन इस साकार दुनिया में है। बाप दादा के सूक्ष्म वतन व मूल वतन में कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। सेवा के अर्थ आवाज में आने के लिए कितने साधनों को अपनाते हो, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित होने के अभ्यासी सेकंड में इन सब से पार हो जाते हैं। ऐसे अभ्यासी बने हो, अभी अभी आवाज में आए, अभी अभी आवाज से परे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने में अनुभव करते हो। संकल्प शक्ति को भी जब चाहो तब संकल्प में लाओ, विस्तार में लाओ, जब चाहो तब विस्तार को फुल स्टॉप में समा दो। स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियां समान रूप में है तो व्यक्तवाणी है। 14 जनवरी 1982। बाबा कह रहे हैं, आवाज में आने के लिए व आवाज को सुनने के लिए कितने साधन अपनाते हो? बाप दादा को भी आवाज में आने के लिए शरीर के साधन को अपनाना पड़ता है, लेकिन आवाज से परे जाने के लिए इन साधनों की दुनिया से पार जाना पड़े। साधन इस साकार दुनिया में है। बाप दादा के सूक्ष्म वतन में और मूल वतन में कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। सेवा के अर्थ आवाज में आने के लिए कितने साधनों को अपनाते हो, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित होने के अभ्यासी सेकंड में इन सब से पार हो जाते हैं। ऐसे अभ्यासी बने हो, अभी अभी आवाज में आए और अभी अभी आवाज से परे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने में अनुभव करते हो। संकल्प शक्ति को भी जब चाहो तब संकल्प में लाओ, विस्तार में लाओ, जब चाहो तब विस्तार को फुल स्टॉप में समा दो। स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की शक्ति एक है। स्टॉप करने की शक्ति तो होता है, एक दूसरी शक्ति भी है, स्टार्ट करने की शक्ति। दोनों ही शक्तियां समान रूप में है। 14 जनवरी की यह मुरली है 82 की। एक है आवाज में आना, एक है आवाज से परे जाना। दो शब्द है भाषा में, एक मौन और दूसरा निश्शब्द। मौन अर्थात साइलेंस, निश्शब्द अर्थात साउंडलेसनेस। समानार्थी रूप से प्रयोग किए जाते हैं। मौन कहो या निश्शब्द कहो, इन दोनों में ही आवाज नहीं है। आवाज से वैराग, किससे वैराग? आवाज से। तो आवाज से वैराग के लिए वो सारी चीजें जो हम करते हैं जिससे आवाज होता है, उनको जानना आवश्यक है, ताकि उस अवस्था में पहुंचे जहां पर आवाज न हो। तो वो सारे साधन, वो सारी बातें जिससे आवाज होता है, वो एक तरफ, और आवाज से परे जाना अर्थात वो जितनी बातें हैं जिससे आवाज होता है वो न करना, अर्थात आवाज से परे जाना, और इसका अभ्यास करो। एक सेकंड में आवाज से परे जाना और एक सेकंड में आवाज से वापस आना भी। स्टार्ट करना और स्टॉप करना, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर, ये अभ्यास करो। आवाज जो है वो इस दुनिया में है साधन, उस दुनिया में सूक्ष्म वतन में कोई आवाज नहीं है और ना ही परम धाम में कोई आवाज है। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो हम करते हैं और जिससे आवाज होता है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। ऐसी 10 बातें जिससे आवाज होता है, और एक एक बात को न करना अर्थात निःशब्द में उतरना अर्थात मौन की तरफ यात्रा आरंभ करना। तो सबसे पहली बात जो हम करते हैं और जिससे आवाज होता है वो है टॉकिंग अर्थात बोलना। आवाज किससे होता है? बोलने से आवाज होता है। तो आवाज से परे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि मौन में, साइलेंस में, निःशब्द में आवाज नहीं है और बोलने में आवाज है। तो सीधा अर्थ हुआ कि अगर निःशब्द तक और मौन तक पहुंचना है तो बोलने से वैराग होना चाहिए। टॉकिंग पहला। दूसरा शाउटिंग, चिल्लाना। एक तो है सादा बोलना जिसमें आवाज है, दूसरा है चिल्लाना। कब चिल्लाता है व्यक्ति? जब दिल दूर जाते हैं तब व्यक्ति चिल्लाता है। स्थूल दूरी और सूक्ष्म दूरी जब होती है तब व्यक्ति चिल्लाता है। क्रोध में क्या करता है? चिल्लाता है ना, तब तो सामने ही होता है व्यक्ति, परंतु हृदय दूर जा चुके हैं इसके लिए उसे चिल्लाना पड़ता है। सूक्ष्म स्थूल कोई दूर है तो चिल्लाता है। तो मौन में जाना अर्थात न चिल्लाने की अवस्था, नॉन शाउटिंग, नॉन टॉकिंग। तीसरा विस्परिंग, विस्परिंग अर्थात विस्पर करना, धीरे धीरे बोलना। हिंदी में कहते हैं सरगोशी, सरगोशी, ये सरगोशिया अर्थात धीरे धीरे बोलना अर्थात कानाफुसी। हाँ, सरगोशी उर्दू है। ये तीन, एक तो बोलना, दूसरा चिल्लाना, तीसरा विस्परिंग, सरगोशी, खानाफूसी, कानापूसी, और धीरे धीरे, पर उसमें भी आवाज है। इस आवाज से परे जाना है। तो आवाज जिन जिन चीजों से होता है वो सबसे परे जाना पड़ेगा, परंतु जाना है जरूर। जाने का एक ही स्थान है, वो कर्नाटक में मैसूर। मैसूर में नागराज भाई बैठे हैं यहाँ पर, वहां पर चामुंडी हिल्स है। चामुंडी हिल्स के लिए कहावत है, इफ यू फॉल इन लव गो टू चामुंडी हिल्स, इफ यू फॉल आउट ऑफ लव गो टू चामुंडी हिल्स, इफ यू आर अलोन गो टू चामुंडी हिल्स, इफ यू आर इन कंपनी गो टू चामुंडी हिल्स। अगर प्यार हो जाए तो चामुंडी हिल्स पे जाओ, यदि प्यार से बाहर हो गए, किसी ने धोखा दे दिया, तो भी चामुंडी हिल्स में जाओ। अगर अकेले हो तो चामुंडी हिल्स में जाओ, अगर दोस्तों के साथ हो तो भी चामुंडी हिल्स में जाओ। इफ यू हैव समथिंग टू डू गो टू चामुंडी हिल्स, इफ यू हैव नथिंग टू डू गो टू चामुंडी हिल्स। यदि तुम्हारे पास कुछ है करने को तो चामुंडी हिल्स में जाओ, अगर कुछ भी नहीं है करने को तो भी चामुंडी हिल्स में जाओ। ऐसे ही कुछ तो हमने देखा नहीं, पहाड़ मंदिर है बस चामुंडेश्वरी, परंतु मैसूर ट्रेडिशन है ये कहावत। कुछ करना हो तो जाओ, कुछ नहीं करना है तो जाओ, अकेले हो तो जाओ, साथी है तो जाओ, प्रेम कर रहे हो किसी से तो जाओ, अगर प्रेम में धोखा हो गया, किसी ने छोड़ दिया, दुखी हो तो भी जाओ, उसी तरह तुम कहां जाओ, परमधाम, चाहे कैसी भी अवस्था हो, अकेले हो तो जाओ, संगठन में योग कर रहे हो तो भी जाओ, कुछ भी कर रहे हो परंतु जाओ, और जाने के लिए वहां आवाज नहीं है, तो यहां की आवाज से वैराग्य चाहिए, तो ये तीन आवाज से परे। चौथा, क्राइंग एंड सॉबिंग, रोना और सॉब करना, सॉब पता है ना, सिसकना ऐसे हुंद के मराठी में उसको कहते हैं सिसकना, सिसकी, सिसकिया, एक होता है क्राइंग और एक होता है जैसे छोटे बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, सभी करते हैं, जिसमें मतलब वो वैसे नहीं रोता है डायरेक्ट, एक होता है रोना जिसमें आंसू आ रहे हैं पूरा ही, एक होता है ऐसे, इसको सॉबिंग कहते हैं, परंतु उसमें भी आवाज है। तो नॉन क्राइंग और नॉन सॉबिंग की जो स्टेज है, सॉबिंग SOB सॉब, तो नॉन क्राइंग एंड नॉन सॉबिंग स्टेज, ये जितनी आवाज हम बता रहे हैं उसमें भी दो दो टाइप है, जो टॉकिंग है एक है बाहर का टॉक, एक है अंतर का टॉक, एक है बाहर का शाउटिंग, एक है अंदर का शाउटिंग, ये दो, एक है बाहर का विस्परिंग, एक है आंतरिक विस्परिंग, उसी तरह ये है एक बाहर का रोना जो कि दिखाई देता है, व्यक्ति रो रहा है, आंसू आ रहे हैं, परंतु एक उससे भी खतरनाक रोना है, वो कौन सा, अंदर ही अंदर रोता है, किसी को कुछ आंसू दिखाई नहीं देते परंतु व्यक्ति रोता है। शोफेनहावर नाम का एक जर्मन फिलोसोफर कभी हुआ है, आर्थर शोफेनहावर, फिलोसफी ऑफ पेसिमिज्म, वो एकमात्र ऐसा पहला जर्मन फर्स्ट थिंकर था, विचारक, कि जिसने भारतीय जो सिद्धांत था कि संसार स्वप्न है उसको स्वीकारा और अपनी फिलोसफी में डाला, कि ये जो संसार है मियर अपीयरेंस है, सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो उसको किसी ने पूछा, तुम हंसते क्यों रहते हो, वो कहते हो अगर ना हंसू तो रो दूंगा, क्योंकि इतना दुख है अंदर, छिपाना पड़ता है, ये जो हंसी है मेरी आवरण मात्र है, अगर इसको ना रखूं तो आंसू ही आंसू आएंगे, इतना दुख अंदर भरा है। बड़ा दुखी था वो, उसकी फिलॉसफी है पेसिमिज्म की, निराशावाद, सब कुछ दुख ही दुख है संसार में। जीनो नाम का एक फिलोसोफर बहुत पहले हुआ था ग्रीस में, वो लोगों को कहता था कि जीवन व्यर्थ है, कुछ फायदा नहीं है जी के, इससे तो अच्छा है आत्महत्या कर लो, उसके हजारों शिष्य थे और उन्होंने कई, उसने कई लोगों को प्रेरणा दी आत्महत्या करने की, जो भी उसके पास आते थे सबको वो इस तरह कन्विंस कर देता था कि जीवन व्यर्थ है, मीनिंगलेस, क्यों जी रहे हो, कुछ है ही नहीं यहां, वो लोग उसके शिष्य इस तरह से कन्विंस हो जाते थे कि वो बेचारे मर ही जाते थे, पर वो खुद 90 वर्ष तक जिया। लोग ने, किसी ने उसको पूछा कि आप तो कहते हो कि जीवन व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, फिर आप 90 वर्ष तक क्यों जियो, जियो, तो कहते फिर बताएगा कौन दुनिया को कि रास्ता दिखाने वाला कोई तो चाहिए, इस कार्य के लिए मैं इतना वर्ष जिया, बाकी तो जीवन तो व्यर्थ ही है। जीनो, हाँ उसका भी चल रहा है अभी ब्लू वेल गेम, तो रोना और सिसकना, इस दोनों चीजों में आवाज है। यदि हमारी अवस्था रोने की है तो हम आवाज से परे नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी आवाज में बाधा है, वो मौन में बाधा है क्योंकि उसमें आवाज है। तो क्राइंग एंड सॉबिंग, पांचवा मोर्निंग एंड ग्रोनिंग, मोर्निंग एंड ग्रोनिंग अर्थात कराहना, ग्रोनिंग करते हैं ना, कराता है कोई बीमारी में, कोई कराता है ना, उसको कहते हैं मोर्निंग एंड ग्रोनिंग। पर उसमें भी तो आवाज है, उसमें आएंगे हम। तो ये कब करता है व्यक्ति ग्रोनिंग मोर्निंग? दुख जब होता है, पीड़ा जब होती है, आंतरिक दर्द भी होता है, शारीरिक दर्द एक तो उसमें बहुत ग्रोनिंग मोर्निंग एंड ग्रोनिंग। यदि अंदर दुख है और पीड़ा है तो आवाज से परे की अवस्था तक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। दुख से मुक्त होना पड़ेगा और उसकी विधि है पहले ढूंढना या स्वीकार करना कि मैं दुखी हूं। ब्राह्मण ये स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनको सिखाया गया है खुशी खुशी खुशी, खुश रहना है, खुशी बांटना है, मुरलियों में है, श्रीमत है, खुशियों पर मुरलियां है। और हम अगर किसको कह दे कि मैं दुखी हूं तो ये ब्राह्मण समाज हमको क्या कहेगा? परंतु दुखी तो है, इस कथन को झुठला नहीं सकते कि हम दुखी है। दुख से मुक्त होने के लिए पहले तो व्यक्ति को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं दुखी हूं, फिर ढूंढना क्यों दुखी हूं। हमने परिचय को ज्ञान समझ रखा है, वास्तव में ज्ञान हमारे पास है नहीं, परिचय है, इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन परिचय नहीं है, एक्वेंटेंस जानना वो ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान बहुत ऊंची चीज है। जब हम इस संदर्भ में जैसे सुकरात के जीवन में दिखाया है कि एक रात, एक दिन सुकरात चला गया, सोक्रेटिस, और सुबह से चला गया और दिन भर नहीं आया घर, रात हो गई, दूसरे दिन सुबह होने लगी फिर भी नहीं आया, तो उसके मित्र पत्नी ने भेजा, सब लोग उसको ढूंढने गए तो कहीं दूर जंगल में बैठा हुआ था। उसको पूछा, तुम क्या हो, तुम क्यों नहीं आए घर पे, कहां थे तुम? तो उसने कहा कि मैं तो सुबह से बैठा हूं, सूरज को उगते हुए देखा, सारे दिन भर इस सूरज के साथ यात्रा की, शाम हुई फिर सूरज को डूबते हुए देखा, फिर चांदनी रात आई, फिर चांद आया, अंधेरा हुआ और मैं देख रहा हूं और सोच रहा हूं क्या रहस्य है इन सब के पीछे, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। लोग कहते तुम बहुत ज्ञानी हो, परंतु मैं जानता तो कुछ भी नहीं, ना तो सूरज के बारे में मुझे कोई खबर है, कैसे वो उगा, सारे दिन भर उसके साथ मैं देखता ही रहा हूं, कैसा रहस्य है, कौन सा, व्हाट सीक्रेट इन सब के पीछे है। रात हुई, अब दिन होने को है और मुझे खबर नहीं मैं कहां हूं, मैं क्या हूं, मैं तो चिंतन में खोया हूं, प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को देख रहा हूं। वैसे ही यह भ्रम जानने का हर व्यक्ति को है, और वह दो प्रकार का है, एक है बाहर का जानना, एक है आंतरिक जानना। बाहर का जानना कोई ये नहीं स्वीकार करता कि ये मुझे नहीं पता, हर एक कहता ये मैं जानता हूं। जानना एक आंतरिक भ्रम, हर एक ये कहता है मैं जानता हूं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमधाम कहां है, ये कहां है, वो कहां है, पर ये सब सूचनाएं हैं, परिचय मिला है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो गहरा है, शायद हमें पता ही नहीं ज्ञान क्या है। ज्ञान की कोई भनक भी नहीं है अभी, ये अगर जीरो लाइन है तो शायद उससे भी नीचे है, ताकि जीरो तक तो पहुंचे पहले, फिर आगे की यात्रा चालू हो ऊपर की। परंतु व्यक्ति अभिमान से भरा है कि हम जानते हैं, और यही उसका भ्रम है, और यही उसे आगे नहीं बढ़ने देता कि हमने जान लिया। ये जानना कि कुछ भी नहीं जाना ज्ञान की शुरुआत है, टू नो दैट वी नो नॉट एनीथिंग। आज जानेंगे, अब जानेंगे, अब से। आज से शुरुआत करना है, मुरली क्या है ये समझना है क्या उसमें। अब तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया, आज से चलो समझने की कोशिश करते हैं। आज वह दिन आया जानने का, कहां थे रोने पर, नहीं मोर्निंग और नहीं। तो दुख को स्वीकार करना, दुख के कारण को ढूंढना और उसका निवारण करना और उससे स्वयं को मुक्त करना। कोई दूसरा हमें कभी मुक्त नहीं कर सकता, हमें खुद ही स्वयं को मुक्त करना पड़ेगा। हमारा दुख ईर्ष्या हो सकता है, कोई कारण घृणा हो सकती है, कोई एक गहरा संस्कार हो सकता है, कुछ तो है। क्योंकि दुख आ रहा है अर्थात कुछ तो है, धुआं उठ रहा है कहां, आग तो है। बिना आग के धुआं कैसे उठेगा, कहीं ना कहीं आग है, उसको ढूंढना। अगला है तो इसमें भी दो प्रकार, एक बाहर का मोर्निंग ग्रोनिंग, एक आंतरिक मोर्निंग ग्रोनिंग। आवाज नहीं है जिसमें, पर आंतरिक आवाज है, पर वो भी जब है तब तक आवाज की आवाज से परे हम नहीं जा सकते। अगला है लाफिंग। लाफिंग तो अच्छी बात है, परंतु आवाज की परे अवस्था में वो भी बाधा है, क्योंकि उसमें भी आवाज है। योग की गहन अवस्था में लाफिंग भी खो जाए, हंसना। एक है मुस्कुराना, परंतु दूसरा है हंसना, और उसके भी ऊपर है अट्टहास। अट्टहास करना अर्थात जोर जोर से हंसना, जैसे रावण कंस इनको अट्टहास करते हुए दिखाया है, उसको कहते हैं अट्टहास, ग्रेट लाफ्टर। हाँ आसुरी, हाँ आसुर अट्टहास करते हैं, वो बड़े जोर जोर से। तो कौन अट्टहास करते हैं, असुर। तो जोर से हंसना अर्थात क्या बनना, असुर बनना। ये बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि स्माइल कब लाफ्टर बन जाता है पता नहीं चलता है, वो दूसरा। योगी की हंसी कैसी होनी चाहिए, कैसी, जीसस क्राइस्ट के लिए कहते हैं, जीसस क्राइस्ट का कोई भी मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है। जीसस क्राइस्ट नेवर लाफ्ट, गौतम बुद्धा नेवर लाफ्ट। कोई चित्र है जिसमें बुद्धा हंसते हुए दिख रहा है, वो अभी बनाया है लोगों ने लाफिंग बुद्धा, पर ऐसा कोई चित्र नहीं है, गंभीर है, गंभीरता। हमेशा तपस्या, महावीर तपस्या, गौतम बुद्ध तपस्या, यहाँ तक कि बहुत सारे अभी के भी, ये किसी ने इनको भी पूछा था, बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर का कोई हंसता हुआ चित्र नहीं है कहीं पर भी, गंभीर एकदम। तो उनको पूछा भी था किसी ने, आप हंसते क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा, ऐसा उत्तर दिया था कि चुप हो गया, संसार की जो समस्या है और वो जो जो कुछ समाज में चल रहा है, इतनी सारी समस्या हो को जब तक मैं उसको हल नहीं कर दू कैसे हंसू, मेरे चैन कहां है जब तक संसार को ठीक नहीं कर दू, ऐसा कुछ उत्तर उन्होंने दिया था। तो लाफ्टर, उस अगर लाफ्टर भी हो तो उस लाफ्टर में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो। वो लाफ्टर जैसे निरागस बालक की हंसी कैसी होती है वैसी हो, उस लाफ्टर में छल कपट और क्या उपहास मॉकिंग निंदा उपेक्षा नीचे गिराना कुंठा, इसमें से कोई भी भाव ना हो, तो ये भी आवाज है। अगला है सिंगिंग। सिंगिंग तो अच्छी बात है, परंतु आवाज से परिस्थिति में सिंगिंग थोड़ी होता है। सिंगिंग और उसके साथ जोड़ो एंड हमिंग। हमिंग अर्थात गुनगुनाना, गुनगुनाते ही रहो। ऐसा कभी कभी हमारे साथ होता है, गुनगुनाते रहो पर बाद में वो पकड़ लेता है गीत कोई परंतु वो आवाज योग में तो वो भी बाधा है। योग तो वो अवस्था है, गहन मौन की अवस्था है, उसमें हम अगर बाबा का कोई अच्छा गीत लग जाए हमको और वही गुनगुना रहे, वही गुनगुना रहे, वही गुनगुना रहे, फिर ये, फिर उसका म्यूजिक में मोह, फिर वो किसने गाया, फिर उसके शब्दों में मोह, ये भी तो बंधन है। हाँ एक बार सुना अच्छा है, गीत बहुत अच्छा था, एकदम बाबा से प्यार पड़ गया, पर वही वही गीत और वही वही शब्द, फिर वो किसने गाया, गायक कौन है, शब्द क्या है, शब्दों के अर्थ क्या है। अच्छा ये शब्द की जगह दूसरा अर्थ शब्द होना चाहिए, ये शब्द की जगह वो अगर शब्द डाल दिया होता तो अच्छा होता, फिर वो बंधन बन जाता है। जैसे वो कितना सुंदर गीत है, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, पहले तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, इतना गाया, बाद में हमको लगा ये जो चंगुल शब्द है इसकी जगह कोई दूसरा डाल देना चाहिए था, ये इतना कुछ रूहानियत वाला शब्द नहीं है। तो गाना और गुनगुनाना, सिंगिंग एंड हमिंग, कितने हुए, सात। ये भी क्या है, एक आवाज है। अगला है चैंटिंग, चैंटिंग अर्थात आलापना, मंत्र चैंटिंग, चैंट करते हैं ना, वो चैंटिंग में भी आवाज है। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, 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 मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, वारे मैं ब्राह्मण आत्मा, वारे मैं ब्राह्मण आत्मा, वो भी चैंटिंग है। आवाज से परिस्थिति में चैंटिंग भी बाधा है। हाँ वो सीढ़ी हो सकती है कि वहां से आगे जाओ, वो एक सीढ़ी है, पर इनिशियल स्टेज है। जैसे कई लोग 10 साल से अभी भी कमेंट्री से ही योग करते हैं, वो कमेंट्री चाहिए कान में, और वही कमेंट्री जो सबसे पहले दिन सुनी थी, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, वही कमेंट्री अब तक ही चल रही है। योग का कोई दूसरा प्रयोग ही नहीं, योग में कोई नवीनता ही नहीं, वही योग, मैं आत्मा, परम धाम, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, वापस चलो, काम पूरा हुआ। योग में हर दिन नवीनता चाहिए, हर दिन एक एक ही योग नहीं करते रहना, जो कल किया था बस आज भी वही, कल यहां से शुरुआत किया तो आज भी वहीं से शुरुआत, आज शुरुआत वहां से करो, द्वापर से, बीच से योग की, सीधा शुरुआत ही परमधाम से उतरने से, जरूरी थोड़ी है नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आने से शुरुआत, चैंटिंग आठ। अगला है एबनॉर्मल बॉडी साउंड्स, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, पेट की आवाजें जो का स्नोरिंग, या तो फिर किसी किसी को वीजिंग होता है बीमारी में, आवाज आती है ना तो सिटी बजती है छाती से, ऐसे बहुत सारी है, छींकना, खांसी करना, योनिंग करना, मल्टीपल, ये सारा सारा, तो ये सारी आवाजें भी आवाजें है। हाँ वही कहा, वो इसके लिए तो इसको 9 नंबर पे डाला, हमारे हाथ में भी है कुछ कुछ, जरूर कोई गलत दिनचर्या, गलत भोजन तब होगा, नींद पूरी नहीं हुई इसलिए यौन, इसलिए आवाज, योग में बैठे और ऐसी आवाज, पूरी यौनिंग, उबासी, उदासी है शायद कोई अंदर इसलिए उबासी है, तो आहार ठीक नहीं है शायद इसलिए है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है बीमारी, कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, प्रकृति के विरुद्ध गए हैं इसलिए बीमार पड़े हैं, जो प्रकृति के साथ चलता है वो बीमार नहीं पड़ सकते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, चाहे कितना भी बड़ा बड़ा कोई योगी है, प्रकृति के नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है, कुछ ना कुछ उल्लंघन किया है तो ही व्यक्ति बीमार पड़ता है, वो दूसरी बात है, हिसाब किताब और सब। लास्ट 10वां नंबर का साउंड है, अब आप बताओ कौन सा हो सकता है कि जिसमें, जिससे आवाज, स्थूल साउंड, फ्रिक्शन, जो हम बाहर की चीजों के साथ में घर्षण के साथ करते हैं, जैसे मारने से, किसी को पीटने से, या कोई तबला, म्यूजिक, कुछ भी, बांसुरी, वो भी एक आवाज है, जैसे कोई झाड़, झाड़ से टकराए, कोई भी मतलब जो घर्षण से, ये हाँ समुद्र, ये जो भी घर्षण जहां हो रहा है वो सारे आवाजें, वो सारे भी आवाजें हैं, वो आवाजों के भान से भी परे चले जाना। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली चली थी। आवाज किसमें बाधा देता है, ज्ञान में या योग में? ज्ञान में। योग में बाधा देता नहीं, कैसा क्रांतिकारी वाक्य बोल दिया। और हमारा तो उल्टा है। हम तो सोचते हैं ज्ञान में चलो कोई चिल्लाता है, हम तो लिखते रहते, मुरली सुनते रहते, उसमें हमको इतना नहीं। हमको सबसे ज्यादा योग में। अगर 7:30 का गीत किसी के मोबाइल में 7:30 बजने से 3 मिनट पहले वही गीत बजा तो मन कैसे हो जाता है आक्रामक, कौन है वो? वही गीत परंतु समय से पहले अगर बज गया तो योग नहीं लगाता है, कुछ और ही कर देता है, अंदर वियोग कर देता है। और एक बात जो सभी से कहनी है, जब मधुबन में आते हैं तो जो बाहर के जो लोग सेवाधारी कहो या मिलने आते हैं, वो अपने मोबाइल में हर एक ने जो सिस्टम बना रखी है ट्रैफिक कंट्रोल की, उसको सबसे पहले ऑफ कर दो, क्योंकि वो हर एक के अपने अपने टाइम पे बचते रहते हैं। यहाँ ऑलरेडी वो अपने जब घर पे हो, सेंटर पे हो, ऑफिस में हो, तब भले रखो, जैसे ही मधुबन में एंट्री करते हो, चाहे शांतिवन, चाहे यहाँ या चाहे उधर ज्ञान सरोवर या हॉस्पिटल में, अपने टाइम पे बजता है उनका। इधर हमारा हो गया बजकर बजके बज हॉस्पिटल का, आके बैठे हैं और उनका चालू, और तब तक बैठो। ये जो सिस्टम हरेक ने, ये बहुत अच्छी है, पर मधुबन में आते ही, आबू रोड पहुंचते ही, ट्रेन से या गाड़ी से, फ्लाइट से जैसे ही आते हैं, वो सिस्टम को पहले बंद करो, क्योंकि यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ हरेक का अपना अपना हिसाब से बजता है, वही 7:30 का गीत 3-4 बार बजता है, पहले 5 मिनट पहले, फिर बजा, फिर 7:07 थोड़ा सा आगे पीछे, फिर वो खत्म होता है, किसी दूसरे का बजता है जाते जाते। इसकी इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है, ये इंस्ट्रक्शंस। तो वो आवाज जो फ्रिक्शन से होता है, जिसे एक होता है अनहद नाद, एक होता है आहत नाद, इसे आहत नाद कहा जाता है। आहत अर्थात आहत करना, चोट करना, चोट से उत्पन्न जो नाद है, फ्रिक्शन से उत्पन्न, घर्षण से उत्पन्न आहत, ये संसार में जो भी आवाज है उनको आहत नाद कहा जाता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने जाना एक ऐसा भी आवाज है जो किसी फ्रिक्शन से नहीं उत्पन्न होता है और जो निरंतर इस ब्रह्मांड में, इस संसार को उन्होंने ब्रह्मांड कहा, इस ब्रह्मांड में गुंजायमान है, और वो नाद है अनहद नाद। और हाँ, फिर धीरे धीरे उन्होंने लगा कि इस आवाज को भी सुना जा सकता है, और उस आवाज से सबसे निकटतम जो आवाज उन्होंने ढूंढा वो अ ओम, ओम आवाज है, और इसलिए ओम को अनहद नाद कहा। वो भी एक नाद है, आहत नाद, अनहद नाद। तो इस सृष्टि में जो भी आवाजें हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द वॉइसेस साउंड्स नॉइस, इन सबसे परे जाना, अर्थात आवाज से परे जाना। तो इतनी 10 आवाजें हैं जिससे परे जाना है। सबसे पहली आवाज बोलना, जहां बोलना है वहां बोल दिया, जैसे बोलने का काम पूरा हुआ, अपनी ड्यूटी पूरी हुई, अपना ऑफिस का काम, अपनी सेवा, कर्म योग जो है वो पूरा हुआ, पूरा होते ही जैसे एक गुफा में घुस जाए आत्मा मौन की। ऐसा नहीं कि वहां पर कोई बैठा है और वो बात करे और हम बात ही ना करें, हमारा मौन है। जैसे हॉस्पिटल में कई समय पहले एक डॉक्टर थे, उसका मौन ही रहता था ड्यूटी टाइम पे, बहुत ही मुश्किल हो जाता सबको। उधर पेशेंट आता था, सिस्टर बोलती थी डॉक्टर पेशेंट देखो, वो कहती थी श्श, ऐसा मौन नहीं चाहिए। ऐसा मौन नहीं चाहिए, जहां हमको बोलना है। मौन अर्थात केवल चुप रहना ही नहीं है, मौन की बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं। मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात आत्मचिंतन, मौन अर्थात कंट्रोल स्पीच, मौन की बहुत सारी व्याख्या है, एक ही मौन नहीं है खाली। तो पहला है बोलना, दूसरा है चिल्लाना, तीसरा है कानाफूसी विस्परिंग सरगोशी, चौथा है रोना, अरे हंसने को भी जल्दी नहीं लाओ, रोना, रोना और सिसकना, कौन कौन सी सकता है इधर माता सॉबिंग किसको होता है? हाँ, एकदम जबरदस्त दुख जब होता है ना, तब व्यक्ति एकदम शॉक में जाता है, सदमा एकदम लगता है उसको, और परिस्थितियां उसको रोने से वंचित कर देती है। अब अचानक ये आता है, सिसकने लगता है, फिर वो बहुत खतरनाक होता है, वो सॉबिंग सिसकना जो होता है ना, बहुत अंदर में बहुत जबरदस्त आघात, जिस व्यक्ति से बहुत ज्यादा मोह है, जिस बहुत इतना मोह है, अचानक उसकी मृत्यु की खबर आ जाए, शॉक में ही चला जाता है व्यक्ति। जैसे BSES हॉस्पिटल में एक सर्जन है, वहां पर बहुत अच्छे सर्जन है, बहुत, उनका बेटा डेंटल कोर्स करने के लिए लंदन विदेश गया, और अचानक न्यूज ऐसी आई, एक्सीडेंट हो गया, और बेटे की डेथ भी हो गई, सीधा डेथ की ही खबर आई, शॉक में ही चले गए दोनों। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक्सीडेंट हो गया, अभी इलाज चालू है और अभी ये है, कुछ भी नहीं, सीरियस है ऐसा नहीं, हम आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, ऑन द स्पॉट डेथ। कुछ क्या कहे, अभी आके गया, अभी सब कुछ मना के गया, घर पे सब अच्छा हुआ, दिवाली हुई, सब कुछ हुआ, अभी गया है, अभी फाइनल ईयर कुछ है डेंटल का, शॉक। तब मतलब आंसू भी नहीं है, जिसको कहते ना सिसकना, वो एकदम से ऐसा हो गया। परंतु आवाज, हम बात कर रहे हैं आवाज से भरे जाने की, मोह जितना गहरा उतना गहरा सिसकना, जितना गहरा दुख उतना गहरा रोना। इसके लिए पहले से ही बहुत सारा आंतरिक काम होना चाहिए, बहुत सारे मोह से, बंधनों से स्वयं को, कल पिंजरों की बात कर रहे थे, आधे रह गए करेंगे कभी। अगला रोना, फिर मोर्निंग एंड ग्रोनिंग, कराना, करा था कौन कौन है? अच्छा पहला एक बताएंगे, बीमारी में कराते हैं, एकदम बुखार ज्यादा आ गया 104 डिग्री, वो इसलिए कराते इसलिए भी है कि थोड़ा अच्छा भी लगता है वो करने से, और उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि थोड़ा अटेंशन सीकिंग, कि भाई दूसरे भी तो समझे हम कोई कम बीमार थोड़ी है, हमको कुछ कुछ हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, जैसे दर्द बहुत कम है तो इतना सा, पर ऐसा करने से व्यक्ति को अच्छा भी लगता है, और वो थोड़ा एक इम्प्रेशन भी पड़ता है कि हम भी कोई कम बीमार नहीं है, हमारा भी थोड़ा कुछ करो। हाँ, व्यक्ति कुछ नहीं, वो बस वो एक आदत भी होती है, एक्चुअली कई लोगों को आदत भी होती है कराने की, थोड़ा सा कुछ हो गया कराना चालू करते हैं, हम देखते हैं ना रोज है इतनी सी बीमारी पर कराना इतना बहुत कराते हैं। अरे वो दूसरा है, वो ठंडी वाला, वो नहीं वो बॉडी भी साउंड में डाल दो, स्नोरिंग और वो सब में खर्राटे ये चाय, वो बैड मैनर्स में आता है, चुस्कियां लेना, ऐसा चावल खाते ऐसा खाते कि आगे वाले को उल्टी आ जाए, ऐसे ऐसे दोनों कोई दो दो हाथ से खाते, पूरा खतरनाक खाते है, हर एक की अपनी अपनी आदत है, तो वो मैनर्स में आता है एक्चुअली, कि चाय पी रहे और आवाज ऐसी बहुत ज्यादा, पानी जूस, आवाज करते करते वो सब, वो भी आवाज है पर बैड मैनर्स वाली, क्राइंग हो गया, फिर हो गया चैंटिंग, फिर है सिंगिंग, लाफिंग, लाफ करना, जोर जोर से अट्टास करना, गीत ही गाने रहा, गीत गाना अच्छी बात है पर 24 घंटा कोई गीत ही गाते रहते फिर क्या करे। फिर है एबनॉर्मल बॉडी साउंड, उसमें है ये खर्राटे भी, जैसे एक चर्च में बहुत बड़ी सभा थी, वो जो पादरी था प्रीस्ट, वो भाषण दे रहा था, सरमन मतलब धार्मिक प्रवचन हर संडे होता है ना, रिलीजियस सरमन, तो एक व्यक्ति देखा एकदम सामने की सीट में बैठा है और सो गया और घुर्राटे खर्राटे ले रहा है जोर जोर से, तो उससे रहा नहीं गया, वो उसने भाषण रोका अपना और उसके पास गया और कहा, भाई साहब जरा धीरे खर्राटे दीजिए, बाकियों की नींद डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि सारा चर्च ही सो रहा है। फिर है लास्ट में फ्रिक्शन वाले साउंड। योग चालू है, हमने योग के कमरे में प्रवेश किया, जोर से दरवाजा खोला धड़ाम, और फिर अंदर गया के योग किया, योग पूरा हुआ हमारा। जाते समय इतने जोर से आवाज किया दरवाजे का कि जितने योग बैठे थे पता नहीं उनको लगा क्या हो गया पीछे, फिर हम आए और गए, हमारी घोषणा हमारा आना और जाना। आवाज करने की क्या आवश्यकता है, चप्पल निकालने की आवाज, जिप चालू, वो तो बहुत ही खतरनाक सीन है। माताओं का मोबाइल बजना मतलब बात मत पूछो, पहले तो उनको ये नहीं पता चलता है मेरा मोबाइल बज रहा है, फर्स्ट स्टेप। कोई उसको दूसरा याद दिलाता है कि तुम्हारा बज रहा है, फिर उसको पता चलता है, फिर मोबाइल तो पर्स में है, तो पर्स उठाना सेकंड स्टेप, फिर उसके बाद में तीन चार जिप खोलना चेन, क्योंकि कौन से खाने में रखा है वो अब पता नहीं है, तो पहला खोला खोला फिर खोला फिर खोला फिर तीन चार खोला फिर पता चल गया, फिर पता चलने का देखा किसका है, फिर कौन सा बटन अभी दबाना है जिससे वो चालू हो वो पता नहीं, और फिर तब तक के लिए किसी ने कहा बाहर जाओ, तो बाहर जाते जाते चालू ही है, चालू है रिंग अभी भी चालू है, वो जाने तक गेट तक भी चालू है, और गेट से सीढ़ियां उतरते उतरते फिर किसी ने शायद बता दिया, और फिर हेलो, और अंदर की सभा पूरी सुन रही है। प्लास्टिक कैरी बैग, हाँ प्लास्टिक कैरी बैग की आवाज। एक जर्मन फिलोसोफर, क्या नाम था उसका, हीगल, हीगल, वो भारत में आया, एक बहुत बड़े संत से उससे मिलना था, वो भारत में आया उस साधु के, उस संत के दर्शन करने के लिए, और आया और दरवाजे पर जूते निकाले पटक दिए, दरवाजा खोला अंदर गया, तो संत ने कहा जाओ पहले जाके अपने जूते और दरवाजे से माफी मांगो बाद में आओगे। व्हाट नॉनसेंस, जूते से माफी, उनमें भी क्या चेतना है, दरवाजे से माफी। उसने कहा अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो आउट। अब वो खास भारत में आया ही इसलिए था इससे मिलने, बोले कोई चारा नहीं था, गया और माफी मांगी, ये मेरे जूते माफ कर दो, तुमको जोर से पटका, ये दरवाजे माफ कर दो। उसने अपने जीवन कहानी में लिखा कि ये तो मुझे मूर्खतापूर्ण लगा, परंतु जब किया एक असीम संतोष का अनुभव हुआ पहली बार माफी मांगने के बाद। किसको माफी मांगी, जूते को और दरवाजे को तो आवाज है ये सारी, योग में आवाज का क्या काम। दरवाजा, ये जो दरवाजा कमरा है बाजू का, यहाँ पे ऐसा दरवाजा, बैठने का भी आवाज करते धड़ाम, सोफा पे बैठने का आवाज, चप्पल का आवाज, दरवाजे खोलने का, खिड़कियां खोलने का, जो खिड़कियां खोलता है ऐसी जबरदस्त खोलता है कि पता नहीं सबको लगता है, पर्दों का आवाज, चेयर पे बैठने का, और चीजें फेंकने का, कोई भी चीजें हम फेंकते, फेंकनी नहीं है चीजों को, रखनी, ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, वो भी आवाज है। पेज पलटने का आवाज, पेन का, बाबा की कुटिया में लिखते रहते हैं बाबा को खत। उस दिन तो एक अजीब दृश्य देखा हमने, पहली बार ही देखा, एक बहन ने खत लिखा और बाबा का जो फोटो है उसकी जेब में डाल रही थी ऐसे, इधर जो जेब है हमने कहा ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या कर रहे है? फिर क्योंकि जेब तो दिखाई नहीं देता है, तो उसने ऐसा डाला और फिर ऐसा लगा जैसे वो नीचे गिरा, फिर से उठाया, फिर से जैसे जेब में डाल रही है बाबा की, ओके हाँ नहीं है जेब, पर ध्यान से देखने पर दिखती है वो, जो ट्रांसलेट में जो जेब है ना है, पर वो, ये भी मुझे लगा ये भी अच्छा ही हो गए क्या, यहाँ कट कर देना चाहिए, इनोवेटिव। हाँ नहीं, ये हमने पहली बार ऐसा दृश्य देखा कि वो जेब में डाल रही, वो गिरा फिर उठाया फिर डाला, यहाँ पे डाल रही है ऐसे ऐसे करके, और फिर डाल के उधर बाजू वाले लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड में जो है पत्र का उसमें डाला, तो ऐसा भी है, ये भी अच्छा है तो आवाज से परे जाना, निःशब्द की ओर यात्रा है ये यात्रा, निःशब्द की ओर मौन की है। ओम शांति।